अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है,
ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है,
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
आप हम सभी संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा अनेक प्रकार के टाइटल्स देते हैं। हर दिन की मुरली में अनेक प्रकार के टाइटल्स देकर के हमें उनसे नवाजते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारे मन में सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता होती है, उस विशेषता को उभारते हैं, साथ ही साथ हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारी बुद्धि दिव्य और विशाल बनती जाती है। वैसे हम देखते हैं कि संसार में ऐसे कोई भी आत्माएं नहीं है जितना कि ब्राह्मणों को जो टाइटल्स प्राप्त होते हैं, संसार में कदाचित किसी को भी इतने श्रेष्ठ और इतने सारे टाइटल्स प्राप्त नहीं होते हैं। फिर चाहे कोई धर्म स्थापक हो, धर्म गुरु हो, महामंडलेश्वर हो, चाहे राम महाराजा हो, राजा हो, या अन्य कोई भी आत्मे हैं, बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को अनेक अनेक टाइटल से संवारा, सजाया, हमारे मनोबल को बढ़ाया। आज की अभ्यक्त मुरली में भी बाबा ने हमें कुछ विशेष टाइटल्स दिए हैं। और आज की जो अभ्यक्त मुरली है, आज की डेट है 31 मई 2020, और आज के मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1986। मुरली की हेडिंग है मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति। तो इस मुरली को हमने अनेक भागों में डिवाइड कर एक एक पॉइंट को एक एक रतन के रूप में लिया है। बाबा का एक एक महावाक्य एक एक अनमोल रतन है। तो हम उसी के माध्यम से आज के मुरली को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला रतन, सबसे पहली पॉइंट्स है टाइटल। तो आज की मुरली में बाबा ने आप हम सभी को चार प्रकार के टाइटल्स दिए हैं। वो टाइटल कौन कौन से होंगे, क्या कहा बाबा ने कि आज वृक्षपति बाप अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने आप हम सभी को इस कल वृक्ष के फाउंडेशन के रूप में देखा। सेकेंड टाइटल बाबा कहते हैं इस कल वृक्ष के तना के रूप में देख रहे हैं। और तीसरा है इस वृक्ष के विशेष फल के रूप में देख रहे हैं। और चौथी पॉइंट, चौथा टाइटल है आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। तो बाबा ने हमें इन विशेष चार टाइटल्स के रूप में देखा। इसमें पहला है फाउंडेशन, हम इस सृष्टि कल वृक्ष के फाउंडेशन हैं। दूसरा है हम इस सृष्टि कल वृक्ष के तना हैं। और तीसरा है विशेष फल है। और चौथा आदि रतन, इस सृष्टि के आदि करने वाले। सेकंड पॉइंट, सेकंड रतन है विशेष आत्माओं की विशेषता। तो बाबा कहते हैं कि आप सभी आत्माओं ने बाप को जाना, पहचाना, बाप को अपना बनाया, और बाप ने भी आप सभी आत्माओं को स्वीकार किया। वैसे आप हम सभी जानते हैं कि संगम युगी विशेष आत्माओं में, श्रेष्ठ आत्माओं में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। हर एक आत्मा की कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। हम देखते हैं कि कोई योगी ज्ञानी तो आत्मा की विशेषता से संपन्न है, कोई योगी तो आत्मा की विशेषता वाले हैं, कोई विशेष यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी देकर अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, भगवान के इस महायज्ञ में अपनी हड्डियों की आहुति दे रहे हैं। तो ऐसे हार्ड वर्कर की विशेषता वाले हैं, कोई गंभीरता की विशेषता संपन्न है, कोई रंडीकता की विशेषता वाले हैं, कोई मिलनसार हैं, तो कोई एकांत प्रिय है। अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा की अपनी एक अलग विशेषता है। और उस विशेषता के माध्यम से इस ब्राह्मण जीवन में वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ उस एक विशेषता के द्वारा जीवन में अन्य और विशेषताओं को भी ला रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि सभी ब्राह्मण बच्चों में एक विशेषता कॉमन है जो सभी में है, और वो विशेषता कौन सी है? बाप को जानने की, बाप को पहचानने की और बाप को अपना बनाने की। तो बाबा ने इस विशेषता के माध्यम से हम सभी को देखा और बाबा कहते हैं, और इसी विशेषता के आधार पर सभी बाप के कार्य में सहयोगी हैं। बाप के कार्य में सहयोगी बनकर एक एग्जाम्पल बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी विशेष आत्माओं ने दुनिया को न देखकर नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसीलिए सभी विशेष आत्माएं हो। तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को संगठित रूप में देख हर्षित होते हैं। हम सभी आत्माएं विशेष आत्माएं हैं। हम सभी की अपनी अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता जो कॉमन है वो सभी में है, बाप को जानने की, पहचानने की, बाप को अपना बनाने की और बाप के कार्य में सहयोगी बनने की। तो बाबा ऐसी विशेष आत्माओं के संगठन को देख करके हर्षित हो रहे हैं और महिमा के गीत गाते हैं कि वाह बच्चे वाह। तो ये सेकेंड मुरली का रतन था, मुरली के पॉइंट थे। तीसरी मुरली के पॉइंट है बाप की पसंद और नंबर का आधार। बाप की पसंद और नंबर का आधार। तो बाबा कहते हैं कि आपने बाप को पहचाना और बाप ने जो भी है जैसे भी है पसंद कर लिया। आपने बाप को कहा कि आप मेरे हो, तो बाबा कहते हैं कि आप जो भी हैं जैसे भी हैं मैंने आपको पसंद कर लिया। क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे पसंद हैं, प्रिय हैं। बाबा कहते हैं दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जो रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाते हो। बाबा उन आत्माओं को देख रहे हैं, उन आत्माओं की चर्चा कर रहे हैं जो भावना प्रधान है, दिल वाले हैं, सच्ची और साफ दिल वाले हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो सांसारिक दिमाग वाले हैं, उनके पास सांसारिक नॉलेज बहुत है, लेकिन सच्ची दिल वाले वो ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं जो सच्ची दिल वाले हैं बाप उन आत्माओं को पसंद करते हैं, वो आत्माएं ही बाप को प्रिय हैं। और सच्चे दिल वाले आत्माएं फल संसारिक नॉलेज से भरपूर नहीं है, लेकिन बाप उनको इतना ज्ञान दे देता है, रचयिता को जान जाते हैं, रचना के आदि मदंत को जान जाते हैं, इस संसार के सारे चक्र को जान जाते हैं, समय के बारे में जान जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भी हम देखते हैं कि वर्तमान समय जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उन आत्माओं के पास संसार का ज्ञान है। संसार के वर्तमान समय जो समय चल रहा है उस समय के बारे में भी उनको ज्ञान है, उनके पास नॉलेज है। तो वो ज्ञान होने के कारण वर्तमान समय संसार में जो समस्या है, परिस्थिति है, हलचल है, इन सब के होते हुए भी ब्राह्मण आत्माएं अचल हैं, निश्चिंत हैं। उन्हें भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं कि कल क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे धंधे का क्या होगा। उनके बारे उनको उन सब बातों के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। जबकि संसार की आत्माओं संसार की आत्माएं जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, वो सभी आत्माएं इन सब प्रश्नों के जाल में फंसे हुए हैं। हर एक को जीवन में डर है, भय है कि पता नहीं कल क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि जो दिल वाले बच्चे हैं, उन दिल वाले बच्चों को बाप इतना ज्ञान दे देता है कि वो जीवन की हर समस्या को, हर परिस्थिति को फेस कर सकते हैं और अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। आगे बाबा ने कहा कि नंबर भी बनते हैं सच्चे और साफ दिल के आधार से। संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं के बारे में बाबा सचेत कर रहे हैं, क्योंकि आप हम सभी सेवा के फील्ड में हैं और हम सभी का लक्ष्य है कि हम इस ब्राह्मण जीवन में एक अच्छा पद प्राप्त करें, विजय माला में आर्य रत्न बने, एक विशेष रत्न बनकर दिखाएं। तो बाबा हमें सचेत कर रहे हैं कि सेवाओं में नंबर का आधार है सच्ची और साफ दिल। सेवा भी सच्ची दिल से सेवा की, वह दिमाग के आधार से सेवा की। बाबा हमें स्वयं के बारे में चेक करने के लिए कह रहे हैं कि जो आप सेवा कर रहे हैं या आपने जो भी सेवा की, वो सेवा आपने सच्ची दिल से की या दिमाग के आधार से की। बाबा कहते हैं दिमाग का आधार, जो दिमाग का आवाज है वो दूसरों के दिमाग तक ही पहुंचता है, लेकिन दिल का आवाज दूसरे के दिल तक पहुंचता है, दूसरे के दिल को घायल कर देता है, दूसरी आत्माओं के दिल में भावनाएं पैदा कर देता है, दूसरी आत्माओं के दिल में उमंग उत्साह पैदा कर देता है, इस ब्राह्मण जीवन को अपनाने के लिए उनको बाध्य कर देता है। तो बाबा कहते हैं कि दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है और दिमाग का आवाज सिर्फ दिमाग तक पहुंचता है। तो जो दिमाग से सेवा करने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं जब सेवा करते हैं तो दूसरी आत्माओं से उनको एप्रिसिएशन प्राप्त होता है, उनकी महिमा होती है। तो बाबा कहते हैं दिमाग वाले नाम कमाते हैं, उनका नाम वाला होता है, ये अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इनके बोलने की शैली बहुत बढ़िया है। लेकिन बाबा कहते हैं दिल वाले दुआएं कमाते हैं, जो केवल दिमाग से सेवा करते हैं उनमें उसकी श्रेष्ठ भावनाएं भरी हुई नहीं होती हैं। तो उन आत्माओं में बोलने की कला होने के कारण वो दूसरी आत्माओं के प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, वो महिमा कमाते हैं, संसार के लोग उनको उनकी प्रशंसा करते हैं कि ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वक्ता हैं, संसार की आत्माएं भी ऐसे अच्छे स्पीकर हैं, इनकी लोग प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप बच्चे दिल से सेवा करते हो, वो दिल से सेवा करने वाले को दुआएं प्राप्त होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये लिस्ट देखो, लिस्ट निकालो, या बाप दादा ने लिस्ट देखी कि दिल से सेवा करने वाले हैं या दिमाग से सेवा करने वाले हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। बाबा कहते हैं दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है और दिमाग का आवाज दिमाग तक रह जाता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। इसके और भी बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट हैं, जैसे कि जो दिमाग वाले हैं वो जब योग में बैठेंगे तो योग में बैठते समय उनकी बुद्धि में वो ज्ञान के सारे पॉइंट्स चलते रहेंगे। कोई एक विशेष पॉइंट्स को लेकर के उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, कोई एक सवाल लेंगे उसके चिंतन में मनन में रहेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर बाप की संतान हूं, शांति धाम के रहने वाले हों। इस प्रकार की जो पॉइंट्स हैं उसको वो रिपीट करते रहेंगे। लेकिन जो दिल वाली आत्माएं हैं वो एक सेकंड में उस शांत स्वरूप की अवस्था में खो जाएंगे, उस शांति के सागर में लवलीन हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है दिल वाले और दिमाग वालों में। लेकिन आप हम सभी ब्राह्मण बच्चों को विशेष ध्यान देना है कि हमें इन दोनों विशेषताओं को जीवन में लाना है, क्योंकि सारा कल्प हमें इन विशेषताओं को यूज करना है। सिर्फ हम संगम युग पर ही इन विशेषताओं को जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन द्वापर युग के बाद, द्वापर युग से हमें इन दोनों विशेषताओं को जीवन में यूज करना पड़ेगा। उस समय हमें अपनी बुद्धि, इसको कहते हैं कॉमन सेंस, विवेक, वो भी हमारे जीवन में होना आवश्यक है, साथ साथ भावना प्रधान होना भी आवश्यक है। अगर हम सिर्फ भावना प्रधान होंगे, दिल वाले अर्थात भावना प्रधान, तो जीवन में जब कोई समस्याएं आएगी तो उन समस्याओं के समय हमें ज्ञान के जिस पॉइंट्स को अप्लाई करना चाहिए था या अप्लाई करना है, हो सकता है हम उस समय उस पॉइंट्स को अप्लाई ना कर सकें। इसलिए दिमाग भी चाहिए और दिल भी चाहिए। तो वर्तमान संगम युगी इस ब्राह्मण जीवन में हमें इन दोनों विशेषताओं से अपने आप को भरपूर करना है, इन दोनों का बैलेंस रख करके इस ब्राह्मण जीवन में चलना है। अगले पॉइंट से बतन के रूढ़िहान। बाबा कहते हैं आज बतन में एडवांस पार्टी, आत्माएं इमर्ज थी, एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, वो बतन में इमर्ज थी और आपस में रूढ़िहान कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी, क्योंकि उनको विशेष बहुत बड़ा कार्य मिला हुआ है। ये संसार में भी कोई विशेष कार्य करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो उसके लिए पहले मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में जो जो उसके लिए आवश्यक पहलू हैं, टॉपिक हैं, उन पर विशेष चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। इसी प्रकार से एडवांस पार्टी की आत्माएं भी सूक्ष्म वतन में आपस में मिलती हैं और डिस्कस करती हैं। तो बाबा ने कहा कि आज विशेष एडवांस पार्टी की आत्माएं वतन में इमर्ज थी और आपस में रूढ़िहान कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं विशेष सात बातों को लेकर के आपस में डिस्कशन कर रही थी। वो सात बातें कौन कौन सी होंगी, उसमें पहली बात, पहली पॉइंट थी समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। समय कहाँ पहुंचा हुआ है, समय अपने संपूर्णता के समय पहुंचा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे जो स्थिति है, स्टेज है, वो हमारी कहां तक पहुंची है, दोनों में कितना बड़ा अंतर रह गया है। हम कह सकते हैं कि इसमें जो ईश्वरीय कार्य है उसके लिए भी ये पॉइंट्स लागू होती है और हर एक ब्राह्मण आत्मा के अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ये बात लागू होती है कि समय और हमारी संपूर्णता, साथ साथ समय और यज्ञ की संपूर्णता, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। दूसरी पॉइंट थी डिस्कशन की कि नंबर कितने तैयार हुए हैं, वो आत्माएं भी वहां नंबर बना रही हैं। तो उनकी ये टॉपिक थी, पॉइंट्स थे कि नंबर कितने तैयार हुए हैं। तीसरी पॉइंट्स थे नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं। चौथी पॉइंट, एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी कौन? संगम युग वाले, संगम युग ब्राह्मण आत्मा जो एडवांस पार्टी के साथी है, क्योंकि दोनों का ही एक ही कार्य है, एक ही लक्ष्य है, सृष्टि का परिवर्तन करना। तो संगम तो एडवांस पार्टी की आत्माएं पूछ रहे थे कि हम तो एडवांस कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं। अगले पॉइंट थी माला, वो माला भी बना रहे हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं माला बना रही थी, कौन सी माला बना रही होंगी, कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा। जो भी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं हैं उनके बारे में वो माला बना रही थी कि कौन कौन कहां कहां नई दुनिया के आरंभ में जन्म देने का उनका पार्ट होगा, किस किस का कहां पार्ट होगा। अगली डिस्कशन के पॉइंट थे विशेष सहयोग, उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग चाहिए। एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी वो अपने कार्य में सफल हो सकें, अपने कार्य में तेजी ला सकें, इसके लिए उन आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं से विशेष सहयोग चाहिए। और वो सहयोग किस रूप में चाहिए? सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का। ब्राह्मण आत्माओं के जो मनसा है, मनोबल है, संकल्प शक्ति है, उन आत्माओं उस शक्ति का एडवांस पार्टी की आत्माओं को सहयोग चाहिए, क्योंकि एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं जो विशेष आत्माएं हैं, बेशक वो बहुत ही शक्तिशाली आत्माएं हैं, पावरफुल है, और वो अपने पुरुषार्थ से पावन बनकर के गई हुई है, लेकिन वर्तमान समय संसार का जो वायुमंडल है, वाइब्रेशंस हैं, चाहे आत्माओं के चाहे प्रकृति के, बाबा कहते हैं वो बहुत बहुत तमोगुणी हैं। तो ऐसे समय में बेशक वो पावन आत्माएं हैं, लेकिन ऐसे तमोगुणी वायुमंडल में, वातावरण में सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान तो हैं, लेकिन वो अपने कार्य को तेजी से आगे बढ़ा सकें, उसके लिए हम ब्राह्मण आत्माओं का विशेष मनसा शक्ति का उनको सहयोग चाहिए। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं पूछ रही थी कि हमारे साथियों को, हमारे संगम युगी साथियों को इतनी बड़ी सेवा की जिम्मेदारी, इतना बड़ा कार्य याद है, स्मृति में है, या अपने ही सेंटरों में बिजी हैं, अपने ही जोन की सेवाओं में बिजी हो गए। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं ये पूछ रहे थे कि हम तो विशेष कार्य में निमित्त हैं, सहयोगी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन संगम युगी जो हमारे सहयोगी साथी हैं, उनको जिस विशेष कार्य के प्रति स्मृति है, या अपने अपने सेंटरों में, अपने अपने जोन में, अपने अपनी सेवाओं में व्यस्त हैं। सातवीं पॉइंट थे विशाल कार्य के प्रति, इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, प्रकृति के 5 तत्व जो तमो प्रधान है, उस संसार में कभी भी कहीं भी कोई भी उपद्रव मचाते रहते हैं। तो इतनी बड़ी प्रकृति का परिवर्तन, दूसरी बात तमोगुण संस्कार वाली आत्माएं, बाबा कहते हैं तमोगुण संस्कारों वाली आत्माएं, इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से तो होगा, विधि जो भी हो, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाल मृत्यु और समूह रूप में मृत्यु, ऐसी आत्माएं जो अचानक के मृत्यु, अकाल मृत्यु या समूह रूप में उनकी मृत्यु होगी, तो उस समय उनकी जो मनोस्थिति होगी, उससे उनके जो वाइब्रेशन निकलेंगे, प्रकंपन निकलेंगे, वो वातावरण कितना तमोगुणी होगा। तो बाबा कहते हैं उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे समय पर सेफ रखना, क्योंकि वो समय खूनी नाहक खेल का होगा। बाबा कहते संसार में खूनी नाहक खेल चलेगा, तो ऐसे खूनी नाहक खेल के समय तो स्वयं की सेफ्टी चाहिए। दूसरी बात, संसार के अन्य आत्माओं को सहयोग भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी और हमें उसके योग्य भी बनाया। तो ऐसे खूने नाहक खेल के समय हमें अपने आप को भी संभालना है, साथ साथ संसार की अन्य आत्माओं को भी सहयोग देना है। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं कह रही थी कि इतने बड़े कार्य के लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं हमारे बारे में, हम ब्राह्मण आत्माओं के बारे में एडवांस पार्टी के विशेष आत्माएं पूछ रही थी। तो वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण आत्माएं कोई जिज्ञासु आया उसको समझाया, कोई मिलने आया उसे मुलाकात की, अपनी रूटीन में चल रहे हैं, खाया पिया और इसी में बिजी, ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपको विशेष कार्य करने हैं। और एक और विशेष कार्य करना है कि गर्भ महल भी तैयार करने हैं, जो एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म लेंगी, उन आत्माओं को जन्म लेने के लिए ऐसे योग्य माँ बाप चाहिए और ऐसा योग्य गर्भ चाहिए जहां वो आत्माएं जाकर के नई दुनिया के आरंभ का कार्य शुरू कर सकें। तो उसके लिए उनको पवित्र गर्भ महल भी चाहिए, तो उसका कार्य भी संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का है, अर्थात आप हम सभी का है। तो ये 7 बातें थे, इन 7 बातों को लेकर के सूक्ष्म मतन में एडवांस पार्टी की आत्माएं आपस में रूढ़िहान कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी। अगली पॉइंट है मनसा शक्ति का इंपॉर्टेंस, ब्राह्मण जीवन में मनसा शक्ति का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो बाबा ने पहले कुछ बातें बताई, उसके साथ साथ और अन्य बातों के बारे में भी बाबा ने बताया कि मनसा शक्ति आपका, आपके जीवन में उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो बाबा कहते हैं कि योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है, आपके पास योग बल जमा हो, योग बल का स्टॉक हो, उसके लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। दूसरी बात, बाबा कहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि संसार में जब हलचल होगी, जब समस्याएं चारों ओर से अपना विकराल रूप धारण करेंगी, तो उस समय ब्राह्मण आत्माओं को अपनी सेफ्टी भी करनी पड़ेगी। तो अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति माध्यम बनेगी, और वो मनसा शक्ति, वो योग बल हमें अभी से अपने आप में अपने अंदर जमा करना पड़ेगा। तीसरी बात, बाबा कहते हैं कि मनसा शक्ति से ही आपकी अंत सुहानी होगी, हम सभी का लक्ष्य है कि हम इस ब्राह्मण जीवन में जो हमारा अंतिम समय है, अंतिम घड़ियां है, शरीर छोड़ने के समय, वापस घर जाने के समय, तो उस समय हमारी स्थिति इतनी सुंदर हो, ज्ञान से भरपूर हो, शक्तियों से भरपूर हो और हम प्रभु प्यार में खुशी खुशी से अपने घर वापस चले जाएं, उस समय कोई भी कष्ट ना उठाना पड़े। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि अंत सुहानी आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मनसा शक्ति की आवश्यकता है। और बाबा कहते हैं कि आगे आने वाले समय में परिस्थितियां सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे आएंगे कि हो सकता है कि आपको विशेष आत्माओं से या विशेष स्थान से कोई सहयोग ना भी मिले, जैसे सेवा केंद्र है, मधुबन है, तो हम मधुबन में हैं तो अपने आप को एक स्ट्रांग समझते हैं क्योंकि हमें मधुबन के वातावरण का सहयोग है, मधुबन की विशेष आत्माओं का सहयोग है। इसी प्रकार से इस सेवा केंद्र पर है तो सेवा केंद्र का जो वातावरण है उसका हमें सहयोग मिलता है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां, ऐसा सर्कमस्टांसेस आए जो आपको विशेष आत्माओं का या विशेष ऐसा कोई सहयोग ना भी मिले, तो उस समय आपके पास मनसा शक्ति अर्थात आपकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी, एक बाप के साथ आपकी बुद्धि की लिंक होगी, तो उस समय आप हर परिस्थिति को डील कर सकते हैं। नहीं तो उस समय जो स्वयं के अंदर कोई कमजोरियां हैं, कमियां हैं या पुराने संस्कार हैं वो इमर्ज होंगे, जैसे किसी में भाई के संस्कार होते हैं, तो जब व्यक्ति कहीं अकेला है, एकांत में है, हो सकता है वहां कहीं कोई भी ना हो, हो सकता है कि कोई वो जंगल का एरिया हो, तो ऐसे समय में यदि हमारे पास मनसा शक्ति का स्टॉक नहीं होगा तो उस समय हमारे स्वयं के अंदर जो कमियां कमजोरियां होंगी वो उभर करके आएंगी और वो कमियां कमजोरियां एक भय का रूप ले लेंगी। बाबा ने कहा कि भय को भूत कहा जाता है, भय का भूत जो व्यक्ति को बहुत परेशान करता है, तो उस समस्याओं से, उन परिस्थितियों से हम सहज ही आगे निकल जाएं, हमारी स्थिति शक्तिशाली रहे, उसके लिए हमें अभी से अपने मनसा शक्ति को या मनसा शक्ति के माध्यम से अपने मनोबल को बढ़ाना है, योग बल का स्टॉक जमा करने है। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए अविश्य बेहद की सेवा के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, क्योंकि आगे आने वाले समय में हर एक को निर्भय बनना ही पड़ेगा, चाहे स्वेच्छा से बने या फिर समय बनाए, तो हमें उस निर्भयता की शक्ति को अभी से प्रैक्टिस में ला करके अपने अंदर लानी है। तो बाबा कहते हैं जब इस प्रकार का आप पुरुषार्थ करेंगे, लक्ष्य रखेंगे, तब ही आपका अंत सुहाना और बेहद के कार्य में विशेष सहयोगी बन सकेंगे, साथ साथ बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। जब हमारी स्थिति ऐसी श्रेष्ठ होगी, हमारे में मनसा शक्ति का स्टॉक भरपूर होगा, साथ साथ निर्भयता की शक्ति होगी, ऐसे ऐसी स्थिति हमारी होगी तो अंत समय में हमारी स्थिति अंत सुहानी होगी, साथ साथ हम बेहद के कार्य में सहयोगी बन सकेंगे, अर्थात संसार के जो आत्माएं हैं, जो आत्माएं परेशान होंगे, दुखी होंगे, चिंतित होंगे, भयभीत होंगे, उन आत्माओं को भी हम सहयोग दे सकेंगे, साथ साथ बेहद विश्व के राज अधिकारी भी बन सकेंगे। अगली पॉइंट है, अगला ज्ञान का रतन है, एडवांस पार्टी के कार का समाचार। बाबा संदेशी बन करके एडवांस पार्टी के जो आत्माएं जो कार्य कर रहे हैं वो समाचार लेकर के संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं को अर्थात आप हम सभी को सुना रहे हैं। तो एडवांस पार्टी वाले क्या कर रहे होंगे वो बाबा हमें बता रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं। जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन आत्माओं का आह्वान करने के लिए, देवकुल की आत्माओं का आह्वान करने के लिए, उनको जन्म देने के लिए तैयार हुए हैं। और कोई हो रहे हैं और कोई तैयारी करने में लगे हुए हैं। कोई तैयार हो चुके हैं, कोई तैयार हो रहे हैं और कोई तैयारी करने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है वो आत्माएं जो अपना ये कार्य कर रही हैं, वो दो रूपों से कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों को सेवा का साधन है समीप संबंध और मित्रता। तो जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो दो संबंधों से मिलते हैं। एक तो समीप संबंध में है, कोई ना कोई रिलेशन में वो है, और दूसरी बात है मित्रता के भाव में। तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं में ये ज्ञान कोई इमर्ज नहीं होगा कि ये हमारे अपने संगम योगी साथी, लेकिन उन आत्माओं को आपस में एक दूसरे, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं को एक दूसरे से ऐसे अपनेपन का आभास होगा कि ये अपने अपने हैं। एक दो के चेहरे के वाइब्रेशंस उनको अट्रैक्ट करेंगे, उनको ऐसा महसूस कराएंगे कि ये अपने हैं। तो बाबा ने कहा कि एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। एक दो को वो अट्रैक्ट कर रहे कैसे, उनका चेहरा जो है हैप्पी है, उनके वाइब्रेशंस उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको अपनेपन का आभास हो रहा है कि ये अपने हैं। फिर बाबा ने कुछ विशेष आत्माओं के बारे में समाचार दिया, उसमें विशेष मम्मा के बारे में, जगत अम्बा के बारे में। तो बाबा ने कहा विशेष जगत अम्बा बच्चों के प्रति दो बोल बोल रही थी। वो दो बोल कौन से होंगे, जीवन में सफलता का आधार। तो मम्मा ने कहा कि जीवन में सफलता का आधार दो शक्तियां हैं, एक सहन शक्ति और दूसरा समाने की शक्ति। इन दो विशेषताओं के आधार से जीवन में सदा और सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। तो मम्मा ने विशेष ये दो विशेषताएं बताई जो आप हम सभी को जीवन में लानी है। बाबा पूछते हैं कि और किसके बारे में सुनाएं, तो किसी ने कहा होगा कि विश्व किशोर भाव के बारे में बताइए। तो बाबा ने कहा कि वो वैसे ही बहुत कम बोलता था, बहुत कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो बहुत ही पावरफुल बोलता है, बहुत शक्तिशाली बोलता है। तो उसका भी एक ही बोल रहा कि किसी भी काल में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न। तो विश्व किशोर भाऊ जो बाबा के विशेष रत्न थे, जिन्होंने संगम युग में साकार बाबा के साथ इस यज्ञ की सेवाओं में विशेष अपना योगदान दिया, उन्होंने भी हम सभी को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष दो बातें बताई। कौन कौन सी, निश्चय अटल और नशा संपन्न। जैसे साकार बाबा का एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाबा को यह निश्चय था कि मैं विश्व का प्रथम विश्व महाराजन बनूंगा, और बना के बना, बाबा को अपने अपने आप में इतना निश्चय था। इसी प्रकार से विश्व किशोर भाऊ को भी, उनको भी ये निश्चय था कि मैं प्रथम विश्व महाराजन का प्रथम विश्व महाराज कुमार बनूंगा। तो बाबा कहते हैं उसको भी इतना निश्चय था और है। फिर बाबा अगले आगे दीदी के बारे में समाचार दे रहे हैं। ये दीदी रूल यहां बहुत अच्छा कर रही थी। दीदी कह रही थी कि बाबा ने सभी को ऐसे ही क्यों बुला लिया, बताया क्यों नहीं, यदि पहले से बता देते तो हम तैयारी कर लेते। लेकिन बाबा कहते हैं कि संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं बेशक उनका लौकिक दुनिया के संबंधी लौकिक संस्कार नहीं है, लेकिन अलौकिक संस्कार अलौकिक संबंध तो है। तो अलौकिक संबंध अलौकिक संस्कार भी आत्मा को खींचते हैं, क्योंकि संगम युग पर जो ब्राह्मण आत्माओं को सुख मिल रहा है उस सुख को छोड़ करके कोई भी जा नहीं चाहेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माएं जो एडवांस पार्टी में गई हैं, बेशक वो अपने आप में भरपूर थी, लेकिन संगम युग के सुख को छोड़ करके एडवांस पार्टी में कोई जा नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसी आत्माओं के लिए यही विधि है कि उनको अचानक का पेपर देना पड़ता है। तो अचानक के पेपर के माध्यम से उन आत्माओं का ये पार्ट है और यही ड्रामा की नूद है कि ड्रामा में जो कुछ भी होता है वो अचानक होता है। किसी को अगर समय दिया जाए कि आपको 6 मास या 1 साल में अपनी तैयारी करके अपने संपूर्ण स्टेज बना लेना है और फिर आपको इस डेट पर वापस चलना है, तो शायद कोई भी इसमें सफल नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में ये नूंद ही ऐसी है कि इसमें हर एक ब्राह्मण आत्मा को अचानक का पेपर देना है। फिर कई आत्माओं के प्रश्न में उठते हैं कि जो आत्मा एडवांस पार्टी में गई है वो कई प्रकार से गई हुई है, कोई बीमारी के माध्यम से या अन्य कई प्रकार से, तो उनके बारे में प्रश्न उठता है क्या ये आत्माएं इन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया है, ये कर्मातीत स्थिति को इन्होंने प्राप्त किया है, क्या यही कर्मातीत स्टेज है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं जो यज्ञ की स्थापना से लेकर के इस ईश्वरीय कार्य में विशेष सहयोगी रहे हैं और अंत समय में जब उनकी अंत घड़ी होती है तो उनका अपना पुरुषार्थ तो होता है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के साथ साथ बाप की भी उन आत्माओं को विशेष मदद मिलती है। तो बाप की जो उनको एक्स्ट्रा मदद मिलती है उसके माध्यम से वो अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन ये सब गुप्त होता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि भगवान से उनको कितनी मदद मिली, क्या क्या सहयोग मिला, लेकिन उसमें बाप उनको विशेष मदद मिलती है और उसके माध्यम से वो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हैं। फिर बाबा ने दीदी के बारे में कहा कि दीदी की एक विशेषता थी और दीदी ने हम सभी को उस विशेषता को जीवन में लाने के लिए कहा। तो दीदी ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसकी विधि है, एक तो बाप को अंगुली दे करके बाप के साथ साथ चलो बाप के रूप में, दूसरी बात है कि बाप को बच्चा बना करके उसकी अंगुली पकड़ करके अब बाप के साथ रहो। तो ये 2 विधि हैं जो हमको प्रैक्टिकल में करने हैं और इसके माध्यम से जीवन में सफलता हासिल करनी है। और दीदी ने कहा कि या तो बाप को अपनी अंगुली दे करके बाप के साथ चलो या फिर बाप को बच्चा बना करके उसकी अंगुली पकड़ करके उसके साथ साथ चलो, तो इससे जीवन में आप सफलता प्राप्त करते रहेंगे। अगले 7वें पॉइंट है 7वां ज्ञान का रतन है। एडवांस पार्टी के साथ संगम युग ब्राह्मण आत्माओं का कार्य, क्योंकि एडवांस पार्टी के आत्माएं और ब्राह्मण आत्माएं इन दोनों का एक ही लक्ष्य है, सृष्टि का परिवर्तन करना। तो बाबा कहते हैं कि एडवांस पार्टी के आप में अपना कार्य कर रहे हैं और आप उनको एडवांस फोर्स करो, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, एडवांस कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं को उन एडवांस पार्टी की आत्माओं में एडवांस फोर्स बनना है, जिससे परिवर्तन करने का कोर्स सहज समाप्त हो जाए। बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मण आत्माएं फाउंडेशन है और आप फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के कार्य को प्रत्यक्ष करो, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप फाउंडेशन हो। तो बाबा ने कहा कि आप ऐसा कार्य करो जिससे विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजे, और उस नगाड़े में कौन सी आवाज आनी चाहिए, सब क्या कहें कि भगवान आ गया, आ गया, मिल गया। बाबा कहते हैं कि अभी तो आप वाणी द्वारा बदलने का कार्य कर रहे हो, अभी आप हम सभी क्या कर रहे हैं, वाणी द्वारा अन्य आत्माओं को जीवन का परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या करना हमें आगे, अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करना, संकल्प द्वारा दूसरों के संकल्पों का परिवर्तन करना। बाबा कहते यह तो अभी आपने शुरू भी नहीं किया, जो विशेष कार्य आपको करना है वृत्ति द्वारा अपने शक्तिशाली श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा अन्य आत्माओं की वृत्तियों को परिवर्तन करना, अपने पावरफुल संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के संकल्पों को परिवर्तन करना, ये कार्य तो अभी आपने शुरू भी नहीं किया है। अगर थोड़ा बहुत किया भी है तो कौन सी बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ये पुरुषार्थ शुरू करेंगे, तो आपके अंदर जो कई प्रकार की कमजोरियां हैं जिनके बारे में आप सोचते हो कि ये कमजोरी शायद ऐसे सहज समाप्त नहीं होगी, बाबा कहते हैं जब आप इस महान कार्य में आप स्वयं लग जाओगे कि दूसरी आत्माओं की वृत्तियों को परिवर्तन करना, अपने शक्तिशाली संकल्पों से अन्य आत्माओं के संकल्पों को परिवर्तन करना, इस विशेष कार्य में जब आप लग जाएंगे तो आपके अपने जो स्वयं की कमजोरियां हैं वो आपको स्पष्ट अनुभव होंगी। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को वैसे बहुत बार बाबा हमें कई बार शिक्षा देते हैं कि इसको छोड़ो, इस कमजोरी का त्याग करो, इस बुराई का त्याग करो, लेकिन हम उसको कहाँ छोड़ पाते हैं। तो बाबा कहते हैं त्याग कर तो देख लिया, कहाँ जीवन में बदलाव आता है, लेकिन जब इस विशेष सेवा में आप लग जाएंगे तो स्वतः ही अपनी कमजोरियों से बैराग आएगा और आपके जीवन से वो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा कि अभी ऐसा प्लान बनाओ, कौन सा प्लान, कि तो अपनी वृत्ति से दूसरी आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करना, अपने शक्तिशाली संकल्पों से दूसरे के संकल्पों को परिवर्तन करना, इस प्रकार की सेवा करने के लिए अभी प्लान बनाओ। बाबा कहते हैं जिज्ञासु और बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। कई सोचते हैं कि अगर हम उन सेवाओं में लग जाएंगे तो ये जो सेवाएं जो नए नए जिज्ञासु आ रहे हैं इनकी संख्या बढ़ रही है, ये संख्या कैसे बढ़ेगी, अगर हम वो करेंगे तो शायद ये सेवा हमारी छूट जाएगी। तो बाबा कहते हैं जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, उसकी चिंता नहीं करो, मधोगरी भी बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो, मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो, यह सब सिद्धियां हो जाएंगी, लेकिन किस आधार से, जब हम उस सेवा में लग जाएंगे, मनसा सेवा, वृत्ति से वृत्तियों का परिवर्तन करना और संकल्प से संकल्पों का परिवर्तन करना, तो इससे यह सब सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। अगले आठवीं पॉइंट है, बाबा ने शक्तियों के बारे में विशेष उनकी विशेषताएं बताई। बाबा कहते हैं शक्तियां बहुत हैं, यज्ञ की स्थापना के समय भी शक्तियां बहुत थीं और अभी गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा हैं, पांडव कम है, पांडव गिनती के, लेकिन फिर भी पांडव है। तो बाबा ने कहा कि जो पांडव है उन्होंने यज्ञ की स्थापना के समय हिम्मत रखकर सहन करने का अच्छा सबूत दिया। विघ्न विनाशक गण निमित्त बनकर औरों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा ऐसे अविनाशी अमर भव के प्रदानी बच्चों को देख करके उनको विशेष प्यार देते हैं, और ऐसी विशेष आत्माएं बाप को बहुत प्रिय है क्योंकि उन्होंने यज्ञ की स्थापना के समय बहुत सहन किया, एक एग्जाम्पल बने, निमित्त बने और दूसरों को भी अपने प्रैक्टिकल जीवन से निमित्त बनाया। तो बाबा कहते ऐसी विशेष आत्माएं बाप को बहुत प्रिय है। आगे बाबा माताओं से मुलाकात करते हैं, ये 9th पॉइंट है, मुरली का 9वां रत्न माताएं। तो बाबा कहते हैं माताओं के फुरी फुरी अर्थात बूंद बूंद से यज्ञ की स्थापना का ये कार्य आरंभ हुआ और अभी ये कार्य सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो माताओं के फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब से यज्ञ की स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता को प्राप्त कर रहा है। बाबा कहते हैं माताओं कि ये दिल की कमाई है, माताएं जो यज्ञ में सहयोग देती हैं, माताओं की वो दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। और दिल की कमाई एक हजार के बराबर है। जो दिल की कमाई है वो धंधे की कमाई से एक पैसा 1000 के बराबर है। तो बाबा कहते हैं कि माताओं ने स्नेह का बीज डाला है और वह स्नेह का बीज अभी विशेष फल बन करके फलीभूत हो रहा है। साथ में पांडव भी थे, तो बाबा कहते हैं साथ में पांडव भी हैं और पांडव भी विशेष कार्य कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए न्यारे और प्यारे बनने का सबूत दे रहे हैं, इसलिए पांडव भी कम नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जैसे शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है, उसी प्रकार से पांडवों का भी पांडवपति गाया हुआ है, क्योंकि चाहे शक्तियां हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे पांडव हैं, सभी विशेष आत्माएं हैं। फिर भी प्रवृत्ति में रहते हुए, प्रवृत्ति को निभाते हुए न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया, इसलिए पांडव भी प्रिय हैं। तो ये आज के मुरली के विशेष 9 पॉइंट थे, 9 रत्न थे जो रिवाइज किए, और आज के मुरली का विशेष वरदान। बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी बनकर के अनुभवों की गुहता में जाओ और रिसर्च करो, कोई भी एक विशेष पॉइंट विशेष टॉपिक लेकर के उसकी गहराई में जाकर के उसके अंत में जाकर के उसके रिजल्ट देखो कि जो हमने पॉइंट जो बिंदु लिया उसके रिजल्ट क्या निकले, अभी इसकी रिसर्च शुरू करो। तो ये आज के मुरली का वरदान था कि अंतर्मुखी बनो और अंतर्मुखता के गुफा में बैठ करके विशेष जो ज्ञान के बिंदु हैं, कोई शक्ति है, कोई गुण है, उस पर गहराई से उस पर रिसर्च करो और उसके रिजल्ट देखो। आज का स्लोगन बाबा का संतुष्टता के सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। संतुष्ट मणि संतुष्टता की विशेषता से संपन्न आत्मा है। उनकी क्या खूबी है कि संतुष्टता के सीट पर बैठ करके संसार में या जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों को खेल के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी जो संतुष्टता की स्थिति है, संतुष्टता की सीट है, उसको अपने जीवन में लाने है। ये संतुष्टता की जो सीट है, स्थिति है, वो ऐसी स्थिति है जो सब प्राप्ति संपन्न है। संगम युग पर इस ब्राह्मण जीवन में जो हमें ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है, ईश्वरीय खजाने मिल रहे हैं, शक्तियां और गुण भगवान से मिल रहे हैं, इन सबको प्राप्त करके, इनको जीवन में अप्लाई करके जो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो अपने जीवन में हम भरपूरता का अनुभव करते हैं, सफलता का अनुभव करते हैं, तभी जीवन में एक संतुष्टता की स्थिति आती है। और उसके बारे में बाबा कह रहे हैं कि उस संतुष्टता की सीट पर बैठ करके जीवन में आने वाली परिस्थितियों को देखो। जो आप में ऐसा कार्य करने में सक्षम है, बाबा कहते हैं वो संतुष्ट मणियां हैं। तो जी, आज के मुरली के कुछ विशेष ज्ञान के रत्न थे, ज्ञान के पॉइंट्स थे, जो वह हम सभी ने रिवाइज किए। इसमें पहले पॉइंट्स थे टाइटल्स, जो बाबा ने हमें टाइटल्स दिए, चार प्रकार के टाइटल्स। यहाँ हम इस कल्पवृक्ष के फाउंडेशन है, तना है, विशेष फल है, और चौथी बात आदि देव के विशेष आदि रत्न है। दूसरी पॉइंट थी विशेष आत्मा की विशेषता। तीसरी पॉइंट थी बाप की पसंद और नंबर का आधार। और चौथी पॉइंट कौन से थे? चौथी पॉइंट कौन से थे? वतन के रूरेहान, जो वतन में एडवांस पार्टी की आत्माएं रूरेहान कर रहे हैं, जो कि उन्होंने सात बातों को, शायद सात पॉइंट्स को लेकर के, सात टॉपिक को लेकर के आपस में रूरेहान की, वो पॉइंट्स थे। फिर आगे में मनोबल का इंपॉर्टेंस कितना है, वो पॉइंट थे। फिफ्थ पॉइंट और छठवें पॉइंट थे एडवांस पार्टी का समाचार, ये बाबा ने हम सभी को आके दिया। और सातवें पॉइंट एडवांस पार्टी का विशेषकर ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग। आठवां शक्तियों के बारे में मुलाकात, जो यज्ञ की स्थापना के आदि में विशेष निमित्त बने। और नाइन्थ पॉइंट माताओं के बारे में, जो घर गृहस्थ में रहते हुए अपने दिल की कमाई से इस ईश्वरीय यज्ञ को सहयोग देती हैं। तो बाबा ने कहा कि उनका दिल का सहयोग है, दिल की कमाई का सहयोग है, धंधे का सहयोग नहीं, धंधे की कमाई नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को भी बाबा ने याद किया और पांडवों को भी याद किया। कहा कि जैसे शक्तियों के लिए गायन है कि शक्तियों का सर्वशक्तिवान है, इसी प्रकार से पांडवों का भी पांडवपति है। तो जी, आज के मुरली की विशेष पॉइंट्स थे। ओम शांति।
जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
साथ है,
सदा सफलता साथ हमारे,
सदा सफलता साथ हमारे,
हाथ में उसके हाथ है,
ईश्वर अपने साथ है,
करने की क्या बात है,
ईश्वर अपने साथ है,
करने की क्या बात है।